नमस्कार। आज 3 अगस्त 2016 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी के अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं ओम प्रकाश मिश्र जो सतना मध्य प्रदेश से हैं और रवि प्रकाश सिंह जो पश्चिम चंपारण बिहार से हैं। तो ओम प्रकाश और रवि, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब इस स्वागत के क्रम के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो आप सबका बहुत प्यारा और मेरे भी जो दिल के बहुत करीब है वह स्टेज है जिसे आप सबने नाम दिया है लाइफ मैनेजमेंट। मित्रों, आज इसके अंतर्गत मैं एक थोड़ी सी एक अलग संदर्भ की बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं और नो डाउट कि वो अभी जो हमारे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो संडे को एग्जाम में अपीयर होंगे उनसे भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ही है, भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों न जुड़ा हुआ हो। मित्रों, मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है और वो सवाल यह है, हालांकि है बड़ा फिलोसॉफिकल किस्म का और इसे आप बेहुदा सवाल भी कह सकते हैं। सवाल यह है कि आप एक वृत्त बनाइए, यानी कि गोल घेरा, राइट? और गोल घेरा बनाने के बाद या किसी ने बना दिया हो और फिर आपसे पूछा जाए कि इस गोल घेरे की शुरुआत कहां से या इसका शुरू कहां है, इसका मध्य कहां है, इसका अंत कहां है, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप बता सकेंगे कि यहां से शुरू हुआ है यह गोल घेरा और यहां पर आकर खत्म हो जाता है? सबसे बड़ा संकट तो ये होता है मित्रों कि ये जहां से शुरू होता है वहीं से खत्म हो जाता है, और बावजूद इसके कि हमको नहीं मालूम है कि ये शुरू कहां से हुआ है तो हमको यह कैसे मालूम हो सकेगा कि फिर ये खत्म कहां पर होगा? आपसे अगर त्रिभुज के बारे में कहा जाए तो आप बता सकते हैं, उसकी तीन लाइनें हैं, तीन लाइनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि या तो यहां से शुरू हुआ होगा या यहां से शुरू होगा। एक एक लाइन अलग अलग खींची गई है। चतुर्भुज, जो भी दूसरी आकृतियां हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनका शुरू और अंत कहां है, कैसा है, हम जानते हैं, लेकिन आप वृत्त का नहीं जानते। ये गोल घेरा एक अद्भुत गोल घेरा है। मित्रों, इस गोल घेरे को मैं लाइफ के संदर्भ में नाम देना चाहूंगा संपूर्णता, कंप्लीटनेस। असल में हम सबके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है फ्रेंड्स कि हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, तो हमारे दिमाग से जो संपूर्णता का जो कॉन्सेप्ट होता है या कह लीजिए कि जो वृत्त की शक्ति होती है, वृत्त की जो समझ होती है, वो धीरे धीरे गायब हो जाती है और हम अपनी जिंदगी को बिल्कुल टुकड़े टुकड़ों में बांट देते हैं। यानी कि जो अखंड दृष्टि होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है और उसके सामने आ जाती है खंड खंड की दृष्टि। और ये जो खंड खंड की दृष्टि है, होता यह है कि हमें कहीं का भी नहीं छोड़ती। ये खंड खंड की दृष्टि का ही परिणाम है दोस्तों कि किसी एक क्षेत्र में तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि ने उसे बहुत महत्वपूर्ण मान लिया था, लेकिन जो दूसरे जो और उसके खंड हैं जो इस जिसमें हम आगे निकल गए हैं उससे भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। और कभी तो इतने पीछे छूट जाते हैं कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अनुमान नहीं लग पाता कि सच में क्या यह भी हम ही थे या हमें इसकी भी जरूरत थी, हम पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन मित्रों, क्या मेरे इनकार कर देने से वो जो मेरा खंड था वह मान जाएगा? क्या वह उस इनकार को स्वीकार कर लेगा या कि क्या मेरी एक अधूरी जो जिंदगी है जो अभी है वो पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि जिंदगी याद रखिए, किसी को कोई रियायत नहीं देती, कोई मोहलत नहीं देती, वो पूरी निर्ममता के साथ और पूरी करुणा के भी साथ आपके साथ रहती है और आपका साथ भी देती है। लेकिन उसके दोनों पक्ष होते हैं, करुणा का भी और निर्ममता का भी। मित्रों, ये जो संपूर्णता का कॉन्सेप्ट है, ये जिंदगी का इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इतना मजेदार है, इतना रोमांचकारी है, और सच पूछिए तो इतना सरल और सहज भी है कि यदि आप इसे जरा सा भी स्वीकार कर लेंगे, जरा सा भी अपने अंदर उतार लेंगे, तो मुझे लगता है कि चाहे वह जिंदगी में कोई सफलता हासिल करनी हो या इनफैक्ट सही मायने में जिंदगी का जो लुत्फ उठाना है उसे आप उठा सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि जिंदगी को केवल सफलताओं के आधार पर ही जीता जा सकता है या जिया जा सकता है। जिंदगी सफलताओं की मोहताज नहीं होती है मित्रों। जिंदगी तो एक जीने का नाम है, सफलता उसका एक हिस्सा है, लेकिन सफलता को हमने अपनी जिंदगी का सब कुछ बना दिया है। वो बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। और जब हम सफलता को, अचीवमेंट को या पर्टिकुलर किसी चीज को सब कुछ बना देते हैं तो बाकी एक ये छोटा सा तो मिल जाता है और जो सब कुछ का जो बड़ा सा हिस्सा था वो छूट जाता है। मित्रों, इस संदर्भ में मैं आपको दो तीन बातें खासकर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकली सिचुएशन में नहीं जाना चाहता। दो तीन बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और ये जो मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरा अर्ज है, केवल उसका पहली लाइन ये है दोस्तों कि जिंदगी को संपूर्णता के साथ देखने, संपूर्णता के साथ करने और संपूर्णता के साथ जीने की कोशिश कीजिए। संपूर्णता, ये संपूर्णता क्या है दोस्तों? आपका एक दिन है, आप सुबह उठते हैं और रात में सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं, यह एक वृत्त हुआ। सुबह उठने से लेकर अगले दिन सुबह उठने तक का यह वृत्त हुआ। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इससे शुरू कहां हुआ और खत्म कहां हुआ, क्योंकि जो शुरू है वही खत्म है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप सोने से शुरू कर सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी को। तो दोस्तों, आप इस जिंदगी के जो आपका एक दिन है, पर्टिकुलर डेट है, एक पर्टिकुलर डे है, इसका संपूर्णता के साथ मूल्यांकन कीजिए। इसको संपूर्णता में ही देखिए। इसमें जो आप मान लीजिए कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 5-6 घंटे जो आप पढ़ते हैं, आप उस अपने पूरे के पूरे दिन को केवल वहां देखते हैं। नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने पूरे के पूरे दिन को जो 8-10 घंटे की वो नौकरी करता है उसमें देखता है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस में देखता है। और बाकी का हिस्सा, जो सच पूछे तो जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, वो कहां गया? आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, कितने घंटे काम कर सकते हैं, कितने घंटे सो सकते हैं? आप देखिए कि इनमें किसी की भी जो सीमा है वो 40% से ज्यादा की नहीं है। एक काम जिसमें, जिसको आप अपना मुख्य काम मानते हैं, उसमें आप मैक्सिमम टाइम 40% दे सकते हैं। 24 घंटे का समय होता है, उसका 40% आप निकाल लीजिए, बस उससे ज्यादा नहीं। रिमेनिंग 60%, व्हाट अबाउट रिमेनिंग 60%? वो ज्यादा है। इसको अगर आप 60% को छोड़ देंगे तो 40% को आप 100% कैसे कह सकते हैं मित्रों? तो पहली बात कि आप अपने दिन का मुआयना कीजिए, अपने पूरे दिन का निरीक्षण कीजिए और खुद उसके सुपरवाइजर बनिए कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके मन की स्थिति क्या है, आपके शरीर की स्थिति क्या है। मैं जानता हूं कि बहुत से हमारे परिचित दोस्त मित्र सुबह उठने के बाद एक थोड़ी सी जो एक्सरसाइज होती है, उसको आप योगा भी कह सकते हैं, उसको प्राणायाम भी कह सकते हैं, उसको मॉर्निंग वॉक भी कह सकते हैं, नहीं करते। उनको लगता है कि इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या फायदा इस 15 मिनट का, इस आधे घंटे का और कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि अगर ये 15 मिनट और आधे घंटे का हमने इस्तेमाल नहीं किया तो एक दिन ये ब्याज सहित वसूल कर लेगा। और यदि हमने ये 15 मिनट या आधे घंटे का इस्तेमाल कर लिया तो ये सच पूछे तो ब्याज सहित हमें वापस कर देगा। इस बात को हम भूल जाते हैं। तो मित्रों, जो मैंने कहा कि अपने एक दिन का पूरा मुआयना संपूर्णता के साथ कीजिए, उसका मतलब यही है कि उस पूरे एक दिन में जो जो चीजें होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। एकांगी दृष्टि और खंड दृष्टि इसी को कहते हैं कि आप एक्सरसाइज को भूल जाते हैं, मतलब शरीर को जो एक व्यायाम और इस तरीके जो थोड़ी बहुत हरकत में आनी चाहिए, चाहे आप कोई भी हो, याद रखिए कोई भी हो, आप मेल हो, फीमेल हो, लड़के हो, लड़की हो, घरेलू महिला हो, किसी भी उम्र के हो, चाहे 50 55 60 साल के ही क्यों ना हो, लेकिन आपको चाहिए कि कम से कम आधा घंटा आप फिजिकल फिटनेस को दें, तब वो जीवन की संपूर्णता का एक हिस्सा बन पाएगा और आप जीवन की संपूर्णता को समझ भी पाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि उसको संपूर्ण रूप से जी भी पाएंगे। सोच करके देखिए कि हम में से कितने लोग उस काम को अंजाम दे पाते हैं। इसके बाद फिर आपके दिन का पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। अब उस सिलसिले में आप करते क्या है, पूरे दिन में काम करते हैं, ये इसको हम काम में शामिल नहीं करते जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी। फिर हम काम में लग जाते हैं और पूरी तरह से काम में डूब जाते हैं, या नहीं भी डूबते, अनमने भाव से करते रहते हैं, जबरदस्ती करते रहते हैं, जो भी है। अब आपको चाहिए कि आप इस काम का भी मुआयना कीजिए कि आप जो भी 8-10 घंटे का काम कर रहे हैं, इस काम को करने के दौरान आपके मन की स्थिति क्या है। आप मन मार के काम कर रहे हैं या सच में मन से जीकर काम कर रहे हैं, खुश होकर काम कर रहे हैं या नाखुशी के साथ कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि पापी पेट का सवाल जो है, यहां आपको अपने मन का मुआयना करना पड़ेगा। अगर आप मन मारकर काम कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि जो 8-10 घंटे आप काम कर रहे हैं इसे हम जी नहीं रहे हैं, केवल काट रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इसीलिए यहां पड़े हुए हैं। और याद रखिए कि जिस दिन आपको विकल्प मिल जाएगा ना, कुछ दिनों के बाद उस विकल्प के साथ भी फिर से दूसरे विकल्प की तलाश वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ विकल्पों की तलाश करता है और अपने वर्तमान से खुश नहीं रहता, वो तलाश ही करते करते इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जो उसको मिलता है उसे वो अपना बना नहीं पाता, अपना समझ नहीं पाता, उसकी दृष्टि हमेशा दूसरों पर होती है, जिसको हमारे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखता है। तो बट नेचुरल है कि फिर आपको अगर घी की थाली ही दे दी जाए तो भी आपको दूसरों में ही ज्यादा दिखेगा। तो मित्रों, ये जो काम करने के 8-10 घंटे हैं, जो आपके पढ़ने के 5-7-10 घंटे हैं, जो आप घर किचन में जाकर के खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, खिलाती हैं, ये सारा का सारा जो वक्त है आपके जीने का वक्त है, इसको एंजॉय करने का वक्त है। आप इसको संपूर्णता से जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि हम जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा पापी पेट का सवाल है, भैया इसको पापी क्यों कह रहे हो, ये तो सबसे धर्मात्मा का पेट है जो हमारे जीवन को बना रहा है, बचा रहा है, बढ़ा रहा है, उसी को हम पापी कह रहे हैं। तो आप सबसे महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं, अगर आप खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं या कमा भी रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी का ही हिस्सा है। तो मित्रों, जब आप एक वृत्त में देखने लगते हैं चीजों को, एक घुमावदार रिंग की तरह देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कहीं कोई छोटा बड़ा लगेगा ही नहीं, शुरू मध्य अंत लगेगा ही नहीं, आपको तो ऐसा लगेगा कि जिंदगी लगातार एक चलती रहने वाली धारा है, बहती रहने वाली धारा है, चलती रहने वाली गाड़ी है। आप देखेंगे मित्रों, हालांकि ये जो संपूर्णता का कॉन्सेप्ट है तो छोटा सा लेकिन बहुत गजब का है, इसमें परिवर्तन करने की जबरदस्त ताकत है। मित्रों, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, जब आप एग्जाम देने जाएंगे संडे को, तो याद रखिए आपको इस संपूर्णता को अगर आप लेकर के चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो डिफरेंट तरीके के होंगे। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर आपने संपूर्णता के सिद्धांत के आधार पर प्रिपरेशन किया होगा, यानी कि मेंस और इंटरव्यू को भी मिला करके किया होगा, तो प्री आपके लिए आसान हो जाएगा। और यदि खंड दृष्टि के साथ आपने सिर्फ प्री की प्रिपरेशन की होगी तो आप देखेंगे कि मेंस और इंटरव्यू कठिन हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक छोटी सी अपील लास्ट में फिर से कि इस संपूर्णता के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार कर और जीवन का न केवल समुचित और पूरी तरह से उपयोगी कीजिए बल्कि पूरी तरह से आनंद भी लीजिए। मित्रों, अब मैं आता हूं कल के एआईआर न्यूज पर। दोस्तों, कल के एआईआर न्यूज में भी कोई खास नहीं है, और आप ये मत कहिएगा कि सर अभी तो चूंकि वो जो सिविल सर्विस प्री के एग्जाम होने हैं उनके स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं इसलिए जानबूझ करके वो कह रहे हैं कि आज भी कुछ नहीं है। ये सच में कुछ ऐसा इत्तफाक ही है कि आज भी बात करने लायक कुछ विशेष नहीं है। लेकिन मित्रों, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर मान लीजिए कि मुझे सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स को कुछ नहीं बताना हो तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। फिर बताने के लिए कुछ ना कुछ तो निकलता ही है, न्यूज में नहीं निकलेगा तो न्यूज़पेपर से निकलेगा, न्यूज़पेपर से नहीं निकलेगा तो सिविल सर्विस की तैयारी का तो अपना क्षेत्र ही इतना व्यापक है कि वहां से निकाल लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज भी कुछ विशेष नहीं है। आपने जो खबरें सुनी हैं, आपने देखा कि उसमें दो इंपॉर्टेंट है। जीएसटी की बात हम लोग कल कर ही चुके हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस की, ये राज्यसभा में अभी पेश हो जाएगा। मित्रों, ये संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत होगा, जो एक तरह से 368 के अंतर्गत ये परिवर्तन होगा। मतलब अभी राज्यसभा इसको 2/3 से पारित करेगी, उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई और कुल सदस्य संख्या का आधा ये राज्यसभा उसको पारित करेगी। चूंकि राज्यसभा उसको थोड़ा सा संशोधन भी कर रही है तो वो फिर से लोकसभा में आएगा, इसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति जब इसको कर लेंगे तो राज्यों के पास जाएगा। तो अभी प्रक्रिया लंबी है, लेकिन स्वाभाविक है कि अगर राज्यसभा से पारित हो जाता है तो आप मान करके चलिए कि फिर ये विधेयक पारित हो जाएगा, क्योंकि राज्य भी अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि कल मैंने भास्कर के कुछ बहुत अच्छे न्यूज आइटम्स आपको प्रोवाइड किए थे तो उससे काफी स्पष्टता आपके दिमाग में जीएसटी को लेकर आ गई होगी। उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा मित्रों अभी, और चूंकि बात हमें दूसरे इश्यू पर करनी है इसलिए भी मैं इसे यहीं ड्रॉप करता हूं। एक खबर थी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि, उस पर हमारे मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि यह जो पैसा है ये शेयर मार्केट में बिना उसके नहीं लगाया जाएगा। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कर्मचारी भविष्य निधि, ये सब पैसा इकट्ठा करते हैं, या बैंक आपका जमा करता है पैसा, तो बेसिकली क्या करते हैं, ये पैसा को अपने पास तो नहीं रखते क्योंकि रखा हुआ पैसा कोई अंडे तो देगा नहीं, तो ये पैसा तो बट नेचुरल है कि कहीं ना कहीं नेशन के डेवलपमेंट में लगता है, चाहे वो इंडस्ट्री में लगे, चाहे सड़क बनाने में लगे, चाहे अस्पताल खुलवाने में लगे, कहीं ना कहीं इस तरह से उस पैसे का इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट करने से जो फायदा होता है उसी का छोटा सा हिस्सा ब्याज के रूप में आपके साथ हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो शेयर मार्केट के बारे में उन्होंने इसलिए खासकर बयान दिया है क्योंकि शेयर मार्केट में थोड़ा सा पैसा लगाना रिस्की भी माना जाता है ना, कि पता नहीं कितना नुकसान हो जाए, पता लगा अगर नुकसान हो गया तो ये सब पब्लिक का पैसा है, उन बिचारों को कैसे वापस करेंगे, सरकार दिवालिया हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है। वैसे दुनिया के सारे देश यही करते हैं, एलआईसी आपसे इतना पैसा लेती है, प्रीमियम लेती है, क्या करती है, एलआईसी भी शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, मतलब डाइवर्ट करते हैं, कुछ यहां लगाएंगे, कुछ वहां लगाएंगे, किसी इसमें लगाएंगे, मतलब सारे अंडे वो एक ही डलिया में नहीं रख देते कि अगर एक अंडा सड़ा तो सारे अंडे सड़ जाएंगे, यानी कि सारी पूंजी वो शेयर मार्केट में नहीं झोंक देते, पता लगा कि गया तो सब कुछ चला गया, वो डाइवर्ट करते हैं उन चीजों को, लेकिन दुनिया में सभी जगह ऐसा होता है। तो थोड़ी सी जानकारी के लिए दोस्तों, न्यूज़पेपर्स का जहां तक सवाल है मैं क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्लिपिंग्स कोई खास नहीं है, हिंदू की दो बड़ी बड़ी क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके थोड़ी बहुत चीजें आपको करंट कंटेंट में प्रोवाइड हो चुकी हैं, हो जाएंगी, और इस इश्यू पर हम लोगों ने हिंदी में भी न्यूज आइटम प्रोवाइड कर दिए हैं, थोड़ी सी बातचीत भी हो गई है, इसीलिए मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स आप लोग देख लीजिएगा। तो मित्रों, अब मैं आता हूं सिविल सर्विस प्री के एग्जाम के संदर्भ में, और फिर से जो स्टूडेंट एपियर हो रहे हैं यह स्पेशली मेरा उनके लिए है, उनके लिए भी है जो अभी एपियर तो नहीं हो रहे हैं लेकिन आगे कभी एपियर होंगे, बट नेचुरल है कि उनके लिए भी उतना ही मायने रखता है। मित्रों, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि आप क्यों परीक्षा में बैठ रहे हैं, अभी जो संडे को होने जा रही है परीक्षा, तो स्वाभाविक रूप से उसमें ज्यादातर के उत्तर होंगे कि हम सेलेक्ट होने के लिए बैठ रहे हैं। कुछ के आंसर ये भी हो सकते हैं कि हम एक्सपीरियंस लेने के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत थोड़े से लोग होंगे कि एक्सपीरियंस लेने के लिए बैठ रहे हैं। मित्रों, इससे पहले कि आप एग्जाम में बैठें, आपको अपना ऑब्जेक्टिव, अपना जो उद्देश्य है बहुत स्पष्ट कर लेना चाहिए कि आप किस लिए बैठ रहे हैं। सेलेक्ट होने के लिए बैठ रहे हैं तो एग्जाम में उसी तरह की भावना रख करके और अपना जो परफॉर्म करना है, आपको जो परफॉर्मेंस देना है उसको दीजिए। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस के लिए बैठ रहे हैं, जिसे मैं एक्सपीरियंस नहीं कहना चाहूंगा, इसकी जगह अगर आप लोग लर्निंग शब्द इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लर्निंग, आप लर्न करने के लिए बैठ रहे हैं कि व्हाट इज इट, कि सिविल सर्विस क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि लर्निंग के लिए बैठने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वो मान करके चलते हैं कि हमने तो सब लर्न किया हुआ ही है। तो मित्रों, अगर आप लर्निंग के लिए बैठ रहे हैं तो वहां आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना। अगर आप सेलेक्ट होने के लिए बैठ रहे हैं तो आपको फाइटिंग मूड में बैठना पड़ेगा, और अगर आप लर्निंग के लिए बैठ रहे हैं तो फिर आपको रिसीविंग मूड में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको लर्न करना है, आपको वहां से चीजें लेनी है। तो लर्निंग की सिचुएशन में आपको अपने साइकोलॉजिकल और दूसरी चीजों का बड़े सावधानी के साथ मुआयना करना होगा, ध्यान देना होगा, उन पर उनको सुपरवाइज करना होगा। और फाइटिंग वाले मूड में तो सवाल ही नहीं है कि बस आपको तो फटाफट बॉक्सिंग पंच करते चले जाना है, राइट। तो ये निर्धारित कर लेना चाहिए आपको। मित्रों, जहां तक साइकोलॉजी का सवाल है, तो मेरी समझ से आप इतने समय से लाइफ मैनेजमेंट को सुन रहे हैं, और मुझे अब ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जो कॉन्फिडेंस है उसका कितना बड़ा रोल हमारी जिंदगी में होता है। कुछ ही दिनों पहले जो एक मैसी की घटना हुई थी, आपको ध्यान होगा कि दुनिया का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी, और वो पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो उस समय वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था, है ना। उसकी आत्मग्लानि में आपने देखा कि उसने संन्यास की घोषणा कर दी कि मैं अब फुटबॉल नहीं खेलूंगा। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन सवाल यह है कि अब आप एग्जामिनेशन के हॉल में बैठकर कॉन्फिडेंस लाएंगे कहां से। मित्रों, मैं अपने बहुत जीवन के लंबे अनुभव और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूं, मैं खिलाड़ी भी रहा हूं, मैंने टेनिस खेला है, मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता हूं, मैं कैरम बहुत अच्छा खेलता हूं, फुटबॉल भी मैंने खेला है और ठीक ठाक ही खेला है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल खेलना आता ही है, मतलब मैं अच्छा प्लेयर इन सबका रहा हूं। और चूंकि इतने सारे का प्लेयर रहा, इसीलिए किसी का भी प्लेयर नहीं बन पाया, जैसा कि अक्सर होता है, तो मुझे वो खिलाड़ी की भावना मालूम है। दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आप पेपर के बारे में सोचना बंद कर दीजिएगा। पेपर के बारे में सोचना बंद करने का मतलब यह है कि ये जो पेपर है ये सरल है या कठिन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, वहां पेपर सरल और कठिन के परिभाषा से परे होता है, इसलिए कि अगर वो कठिन है तो सबके लिए कठिन है, कट ऑफ मार्क्स डाउन हो जाएंगे। अगर वो सरल है तो सबके लिए सरल है, कट ऑफ मार्क्स हाई हो जाएंगे। हाँ, प्रॉब्लम तब होती है जब बाकी के लिए सरल है लेकिन आपके लिए कठिन है, तब प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब है कि हमको बैठना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं मान करके चलता हूं मित्रों कि जो भी एग्जाम में बैठेगा एटलीस्ट एक लेवल की तैयारी करने के बाद ही बैठेगा, क्योंकि अगर आपकी उस लेवल की तैयारी नहीं है तो याद रखिए कि फिर आप लर्न भी कुछ नहीं करेंगे। केवल बैठ जाने से एक्सपीरियंस नहीं मिलता, एक्सपीरियंस तभी मिल पाता है जब आपके तैयारी भी हो। अगर प्रिपरेशन नहीं है तो लर्निंग भी नहीं है। तुलना बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये सरल है ये कठिन है, दिमाग से हटा दीजिए। कठिन है, सबके लिए कठिन है, मेरे लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरल है तो बहुत अति उत्साह में मत आइए, सबके लिए सरल है, आपके लिए ही सरल नहीं है, राइट। जब आप तुलना को अपने दिमाग से हटा देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो अंतर मन है वो काफी स्थिर हो गया है, काफी स्थिर हो गया है। मित्रों, दो बातें मैं यहां आपसे और कहना चाहूंगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन के साथ आपको ये लग सकता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, तो अब वहां जज मत बनिए, फॉरगेट अबाउट इट। वहां आपको जज नहीं बनना है कि ये क्वेश्चन गलत है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको तो देखना है कि ये क्वेश्चन गलत है तो इसको कैसे आप जो पूछे गए सवाल हैं, जो दिए गए ऑप्शन हैं, उसके माध्यम से एक बेहतर आंसर दे सकते हैं। दैट्स ऑल, आपके हाथ में सिर्फ इतना ही है। उस पर उसको उसके रिव्यू में मत लग जाइए, उसके एनालिसिस में मत लग जाइए कि ये पूछा जाना चाहिए था या इसकी जगह पर ये शब्द होना चाहिए था या ये बात होनी चाहिए थी। नॉट एट ऑल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस पेपर तैयार किए जाते हैं दोस्तों, उनमें सारे ट्रिक्स आजमाए जाते हैं, सारे ट्रिक्स आजमाए जाते हैं। आपको वहां किताब की भाषा नहीं मिलेगी, किताब का कंटेंट भी नहीं मिलेगा, ठीक यही बात दिए गए ऑप्शन पर लागू होती है। चीजें बदल चुकी होंगी, आप उसमें उलझिए मत, उसमें रुकिए भी मत। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात एक देना चाहूंगा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा, कहना चाहूंगा मित्रों कि जैसे हमने अभी चार टेस्ट सीरीज आपको दिए 50-50 क्वेश्चंस के, उसमें एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं केवल एक इशारे के तौर पर आपको बता रहा हूं, जो मुझे ध्यान आ रहा है क्योंकि उसको लेकर के मेरे पास कुछ मेल आए इसलिए मुझे वो ध्यान भी है। उसमें था कि निम्न में से कौन सा या कौन सी बातें केंद्र सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की पृष्ठभूमि या आधार प्रस्तुत करती है। मतलब यह है कि नीचे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट या हो सकता है दोनों स्टेटमेंट सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो सरकार के विरुद्ध पेश किया जाता है उसके लिए एक बेस बनाती है। तो पहला शायद विकल्प मैंने दिया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और दूसरा मैंने दिया था कि जो सरकार होती है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ये दो मैंने विकल्प दिए थे। मेरे पास बहुत से मेल आए कि सर इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। पहली बात तो यह कि ये आपको कहना ही नहीं है कि कोई उत्तर सही नहीं है। अगर उसमें ये विकल्प दिया गया है कि कोई उत्तर सही नहीं है तो आप उसमें निशान लगा दीजिए। दूसरी बात, ऊपर की लाइन में देखिए कि आधार प्रस्तुत करता है। अब आप लोग, आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में यह पढ़ा है कि जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और उसमें दिया गया है कि वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अब आपका दिमाग एनालिसिस करने लगा कि राज्यसभा के प्रति तो होती नहीं है तो संसद कैसे हो सकता है। लेकिन मित्रों आप वहां ये भूल जाते हैं कि जो दोनों में जो नियरेस्ट, अगर संसद हम कह रहे हैं तो एक बड़े हिस्से को की हम बात कर रहे हैं। अगर संसद का अधिवेशन चल रहा है और मान लीजिए कि राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही है तो यही कहा जाता है कि संसद का अधिवेशन चल रहा है। तो आपको वहां थोड़ा सा अपने को लिबरल बनाना होगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलना होगा और सैद्धांतिक तौर पर चीजें एक्सेप्ट करनी होगी। तो वहां पर वह कथन सही है कि जो सरकार होती है, जो कैबिनेट होती है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, भले ही वहां संसद की जगह लोकसभा की जगह वहां संसद शब्द नहीं लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ कर दिए जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि जिसने क्वेश्चन बनाया है वो उसको समझ नहीं पाया, उसको पकड़ नहीं थी या प्रूफ रीडिंग हो गई। वो आपकी समझ को देखना चाहता है कि आप वहां से चीजें पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। मित्रों आपको एक ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे कि दो ऑप्शन बिल्कुल दोनों सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों सही है, लेकिन आप दोनों को चुन नहीं सकते, दोनों में से आप एक का ही चुनाव कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? तब हमारे पास जो तरीका होता है मित्रों सिर्फ एक, और वह यह कि उसमें जो सर्वोत्तम ऑप्शन हो, जो बेस्ट ऑप्शन हो, वह आपका उत्तर होगा। बेस्ट ऑप्शन, रोटी कपड़ा और मकान, इन तीनों में से किसे आप सर्वोत्तम मानते हैं? रोटी को मानते हैं, दैट्स ऑल। इस सिद्धांत को अपने दिमाग में रखिए, है ना। वहां आप अपना वक्त अननेसेसरी रिव्यू में मत लगाइएगा, वहां रिव्यू में मत लगाइएगा कि ये पूछा जाना चाहिए था, ये गलत दिया गया है वहां, तो क्योंकि आपके पास कोई उपाय है ही नहीं उसका, आप अपना कोई विरोध दायर कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा। आप जो बेस्ट कर सकते हैं वही करके आने की कोशिश कीजिए। मित्रों इसके बाद जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए, दोनों पेपर आपके हो जाएं, तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि उसी रात में आकर, उसी रात में, ज्यादा से ज्यादा आप नेक्स्ट डे का समय ले सकते हैं, आप अपने पूरे एग्जामिनेशन के एक्सपीरियंस को राइट कीजिए, लिखिए, पूरे छोटे से छोटे अनुभव से लेकर के बड़े से बड़े अनुभव तक को सिलसिलेवार पॉइंट दे देकर के 1, 2, 3, 4, 5 लिख डालिए। कौन सा क्वेश्चन कठिन लगा, क्यों कठिन लगा, कैसे सरल लगा, साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्या थी, हेल्थ की पोजीशन क्या थी, और फिर आप कंक्लूजन में अपने लिए निर्देश भी लिखिए कि आप नेक्स्ट के लिए आप क्या अपने को सजेस्ट करेंगे, खुद को सजेस्ट कीजिए। कि नेक्स्ट में मैं ये अपनी प्रिपरेशन में ये चीजें और ऐड करूंगा। और याद रखिए कि भले ही आपका उद्देश्य लर्निंग नहीं था, सेलेक्ट होना ही था, लेकिन फिर भी आप अपने को रिव्यू कीजिए। ये मत समझ लीजिएगा कि क्योंकि मैं तो लर्निंग के लिए बैठा ही नहीं था तो मैं फिर मैं क्यों लिखूं। सेलेक्ट आप होंगे नहीं होंगे गॉड नोज, यू मस्ट ऑल्सो बी नोइंग, आपको भी पता होगा, बहुत लोग जानते भी हैं जिनके पेपर्स अच्छे बनते हैं, लेकिन फिर भी हमें लिख लेना चाहिए। हो सकता है फिर से बैठना पड़ जाए क्योंकि मेंस में न निकल पाए, अगर मेंस में निकल गए, इंटरव्यू में भी निकल गए तो हमें वो रैंकिंग नहीं मिल पाई जो हम चाहते थे, तो हम फिर से बैठेंगे। तो दोस्तों अपने पूरे एग्जामिनेशन के एक्सपीरियंस को प्लीज नोटेड डाउन, उसको आप रिव्यू कीजिए और उसको लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, खासकर सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन को लेकर के मैं सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार, इन तीन दिनों तक आपसे बातें करता रहा हूं। लगभग 15 मिनट मैंने इस पर बातें की हैं और अब मैं इसे अपनी तरफ से यहीं खत्म करता हूं। लेकिन अभी दो दिन आपके पास और हैं, डेली ऑडियो गाइडेंस कल यानी कि बृहस्पतिवार को आएगा और फ्राइडे को डेली ऑडियो गाइडेंस आएगा। तो अगर आप लोगों को किसी और प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप मुझे ईमेल से लिख दें, मैं उनके उत्तर डेफिनेटली प्रायोरिटी बेसिस पर आपको फ्राइडे तक डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप और क्या जरूरत महसूस करते हैं, तो प्लीज लेट मी नो, डोंट हेजिटेट, कोई संकोच मत कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी और किस तरीके की समस्याएं हैं। तो मित्रों, प्रेस क्लिपिंग्स मैं नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्र हैं, सागर मलिक जो शामली उत्तर प्रदेश से हैं, मयंक शर्मा जयपुर से, प्रियंका ओपी जाट अजमेर राजस्थान से, अच्छेलाल चौहान यूपी से, विजय कुमार जय, प्रतीक श्रीवास्तव, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, हिमांशु चौहान और श्रवण कुमार पांडे रीवा मध्य प्रदेश से। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त किया जाता है, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।